सर्वात्मी सवैवात्मी नजमानी प्रयादी सावन का महीना है। आज मैं अपने गुरु पाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट हूँ विष्णु पाद कृष्ण भक्ति प्रज्ञान के सब गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि सहस्त्रम दंड दर्शन की ज्ञापन करते हुए आज श्रावण महीने में झूले के संबंध में कुछ बतलाने जा रहा हूँ। आप लोग मेरा सभी स्नेह आशीर्वाद ग्रहण करें। श्रावण का महीना बहुत ही ब्रज के लिए चारों ओर रिम झिम बरसा हुआ श्रावण के सुहावने ऋतु में उमर घुमर कर चारों ओर बादल छा रहे हैं। कभी वर्षा की फुहारें पड़ती हैं, चारों तरफ में हरियाली छाई है। यमुना में भी निर्मल सुंदर मीठा जल भरा है, उसमें छोटी छोटी लहरें आ रही हैं, कमल के फूल उसमें लहरा रहे हैं, भौरे उसमें गुंजार कर रहे हैं, मानो श्रावण महीने का संदेश चाय भी कुहक रही है, मोर लोगों को देख करके आनंद के मारे नृत्य करने लगते हैं। और ऐसी दशा में ब्रज की जितनी भी लड़कियां हैं बहुएं हैं वे अपने पिता के घर में जाकर झूले पर झूलना चाहती हैं। विशेषकर के ब्रज में यह सबसे बड़ा त्योहार होता है। राधा जी की शादी हो चुकी है, वे जावट में हैं। अभी तक सिद्धाम भैया नहीं आया, बड़ी चिंता कर रही हैं। सावन का महीना में दो चार दिन पांच दिन सात दिन चले गए, अभी तक सिद्धाम भैया नहीं आया, इसलिए उनकी आंखें भी उमड़ने घुमड़ने लगती हैं, भीतर भीतर रोती हैं। इतने में सिद्धाम एक दिन राधा जी को लेने के लिए नहीं सुनाई पड़ता, सुनाई पड़ रहा है?
हेलो, हमारी आवाज आ रही है आपकी?
हाँ तो ठीक है, चलने दीजिए, बीच बीच में आप बोल देंगे यदि नहीं कुछ असुविधा। तो सिद्धाम जी बरसाने से जावत में पहुंचे, राधा जी उनको देखकर के ही अपने भैया को देखकर के बड़ी जोर से डकर डकर रोने लगी। सिद्धाम भी रोने लगते। जब आवे कुछ शांत हुआ तो बोली, भैया क्या मेरे माता पिता जी मेरे भैया मेरी छोटी बहन अनंग मंजरी क्या मुझे भूल गई है? श्रावण महीना प्रायः समाप्त होने को आया और पिताजी ने मुझे बुलाया नहीं। ये बहन हम लोग कुछ व्यस्त थे, रोज ही आने को सोच रहा था, इस आने में विलंब हो गई। राजा जी ने कहा, भैया तुम्हारी सास को जाकर के उससे कहो जो मुझे भेजे, वो मुझे भेजना नहीं चाहती, इसलिए पहले जाकर के उसे मीठी मीठी बोली اور جو کچھ لائے ہو وہ ساری مٹھائیاں اسے دو اور آبھوشن. سنتے ہیں سدام بھیا جسلا کے پاس میں گئے, انہوں نے بڑے پریم سے اسے پرنام کیا اور اسے میٹھی میٹھی باتوں سے اسے پرسن کیا اور جو کچھ اپہار لائے تھے اسے دیا. آج اب ساون کا مہینہ ہے, میں اپنی بہن کو لینے کے لیے آیا ہوں, آپ کرپا کر کے میرے ساتھ اسے بھیجیں. پہلے تو وہ بھیجنا نہیں چاہتی, آنا کانی کرتی ہے, کنتو سدام بھیا کے آگرہ کو دیکھ کر اس نے بھیجنا سوچار کیا. اسے لے کر کے گاڑی میں بیٹھایا, گاڑی میں نے ایمان جیسا سجا ہوا اچھے اچھے بیلوں کے سارا. سیما پر آتے ہیں راج کا جی سنا زور زور سے روتی ہوئی دلاب کرنے لگ گئی. میا اور پتا جی نے اور پاس پڑوس کی مہیلاؤں نے گھر میں لے گئی. وہاں پر پہلے سے سب لوگوں سے ملی پتا جی نے, میا نے اس نے انہیں آلنگن پاس میں بدھ کر لیا, سانتنا دیا. اس کے بعد میں اپنی سہیلیوں سے ملی, جھولا پہلے سے ہی تیار تھا, سکھیوں کے ساتھ میں جھولا پر بیٹھی اشت سکھیاں للتا وشاکھا چترا چمپک لتا تنگ ودیا ہندو لیکھا رنگ دیوی سدیوی اور ان کی اپنی پردھان سکھیاں روپ منجری رتی منجری لونگ منجری اتیادی مانو پہلے سے اس کے لیے پرستت تھی. جھولا پر راجا جی کو بیٹھا کر ملہار راگ گانا آرمبھ کیا. ملہار راگ کے ساتھی میں جو ہی آرمبھ ہوا شریمتی جی سوئیں سرک سکتی جب ملہار راگ گائیں اور ان کی تحریریا تو برسا کی فہار کیوں نہ ہو, جم جم رم جم برسے کی فہار پڑنے لگی, کوئل بھی کہکنے لگی, مور بھی نت کرنے لگے اور بڑے آنند کے ساتھ میں دھلنے اور دھلانے. کنتو اس میں کوئی رس یا آنند نہیں آیا. کیوں نہیں آیا؟ گوپیوں کے پران بلب کرشن نہیں. ادھر کرشن بھی ملنا چاہتے ہیں, ادھر شریمتی رادھیکا جی بھی ملنا چاہتی ہیں, کنتو سہج میں ملن ہونا بڑا بھاری کٹھن سہج نہیں ہوتا. رادھا جی کچھ دن پہلے سے ہی انہوں نے مانتی تھی کہ میں کرشن سے نہیں ملوں گی. ادھر کرشن تڑپ رہے ہیں, سہل جی کرشن کی دشا دے کر کے گرہ دشا دے کر کسی پرکار سے پہنچے. یہ دو دن رادھا جی کے آنے کے پہلے کی بات ہے, جب وہ آتی ہیں برسانے میں, اس کے پہلے یہ جاوت کی ہی بات ہے. سبل جی جاوت میں گئے, ان کو دیکھ کر کے جیتلا ان پر بگڑ پڑی, برس پڑی, بولی تو مرا کس لیے آیا یہاں, تو یہاں پر کیوں آیا بتلا. انہوں نے کہا کہ ہمارا بچڑا ایک کہیں کھو گیا ہے, اس کو ڈھونڈنے کے لیے آیا. تو تیرا بچڑا یہاں سے کیسے آ جائے گا؟ کہا کہ میں کھوج رہا ہوں, بہت دنوں سے اسے مل نہیں رہا, مل رہا ہو سکتا ہے کہ آپ کے گایوں کے ساتھ میں یہاں پر آ گیا ہو. شگل کی بات سن کر کے اچھا تو جاؤ جاؤ جلدی سے ڈھونڈ کر کے جلدی سے یہاں سے چلے جاؤ. وہ بھیتر چلا گیا, फिकर जाकर के राधिका जी से और उनकी सहेलियों से मिला। आज कृष्ण आपके गृह में तड़प रहे हैं, अधिक दिन शायद प्राण भी न रखे, किसी न किसी प्रकार से उनका उनसे आपका मिलना अत्यंत आवश्यक। सुनकर के राधा जी थक नहीं सकी, जल्दी से जल्दी मिलने के लिए उतावली हो गई, किंतु कैसे मिला जाए। सुगल जी देखने में बड़े खूबसूरत और राधा जी के साथ जैसे ही एकदम खूबसूरत थे, यदि उनको कोई लहंगा और सुंदरी इत्यादि पहनाया गया था राधिका जी के समान एकदम लगते थे। उन्होंने राधा जी को अपने देश में सजा दिया, सुगल के सखा में पगड़ी और धोती और खूब राधा जी का लहंगा इत्यादि सब पहन करके घर में रह गए और उनको कहा जैसे आप हमारे देश में जाकर के कृष्ण यहाँ पर हैं नंदगांव में, आप उनसे मिलिए। ऐसा कह करके सुबल जी स्वयं राधिका जी का वेश पहन करके कुछ सखियों के साथ वहां रह गए और राधिका जी सुबल का वेश बना करके पगड़ी और साथे और धोती इत्यादि पहन करके लड़कियां लेकर के वहां से चलने लगी, क्योंकि उनके स्त्रियोचित जो वस्त्रस्थल इत्यादि हैं वो तो दिखाई पड़ने से तो वो पता चल जाएगा, इसलिए उनके गोदी में एक छोटा सा बछड़ा नया भी उनके गोदी में बैठा दिया और वो गोदी में लेकर के चली। उनकी सास ने पूछा अरे सुबल क्या तुम्हारा बछड़ा मिल गया, तो देखो मैया ये तुम्हारे गायों के साथ में था, इसको लेकर के जल्दी से जाओ फिर मत आना और उस काले को मत लाना, इसके लिए सावधान रहना। श्रीमती राधिका जी उसी के शब्दों में ही स्वर से स्वर मिला करके ऐसा बोली थी, इसलिए वो पहचान नहीं सकी। कृष्ण के पास में जब से मिली उस समय में कृष्ण ने देखा जी तो सुगल सखा वो भी नहीं पहचान सके। सुगल सखा कहो क्या समाचार है, वो मिलेंगे कि नहीं? अतः उनका मिलना बड़ा भारी दुष्कर है, चारों तरफ में पहरे और सब बैठा दिए गए हैं और वो खुद ही लटकियां लेकर के खड़ी है और उनको आने नहीं देती, इसलिए वो भी बड़ी बड़ी गृह में कातर हैं, उनका अनासंभव है। सुनकर के कृष्ण हाय हाय करने लगे और तड़पने लगे, अष्टसात्विक विकार उनके होने लगे, मूर्छित जैसे होने लगे। इतने में सुबल बनी हुई राधिका जी ने अपने घूंघट उठा लिए और बछड़े को रख दिया और देखा जी ये तो श्रीमती राधिका जी खड़ी हैं, उनसे प्रेम से मिलन हुआ। ये जबकि वहां पर पहुंची बरसाने में जब गई तो दूसरे दिन कृष्ण को पता लगा वो एक विश्व दूसरे देश में सजा कर कृष्ण और वहां पर मिले। सबको ने मल्हार राज के साथ में कृष्ण को झूलने पर बैठा कर और उन्हें झुलाने लगी। कृष्ण स्वयं बैठ करके झूले पर और राधिका जी को बैठा करके ऐसे झूलने लगे, जोर से झुलाने लगे। राधिका जी ने उनको आलिंगन पास में बद्ध कर लिया, जो कृष्ण बहुत दिनों से चाहने पर भी राधा जी उनसे मिलती नहीं थी और आज स्वयं ही उनको पकड़ करके ऐसे बैठ गई जैसे कि गिर न जाए और कृष्ण की मुराद ऐसे पूरी हुई। सखियां बड़े आनंद के साथ में उनको झुलाने लगी। इस प्रकार से सावन का महीना में झूलन में ऐसी सब लीलाएं हैं जो कि कृष्ण और राधिका जी चाहने पर भी जो नहीं कर सकते वो झूलन में झूले पर वो सब लीलाएं उनकी होती हैं और सखियां बड़ी आनंदित होती हैं उन्हें मिला करके, कृष्ण भी आनंदित होते हैं। इस प्रकार से सावन का महीना वो बरसाने में ही रहती हैं और वहीं पर कृष्ण से भी मिलती हैं और प्रतिदिन झूले में झूलती हैं और सखियां भी आनंदित होकर के झुलाती हैं। कभी कभी राधा और कृष्ण दोनों मिलकर के सखियों को भी झुलाते हैं एवं आनंदित होते हैं। इस प्रकार से अभी भी ब्रज में ये रीति चली आ रही है कि सभी जितनी भी लड़कियां हैं जिनकी शादी कहीं बाहर में हुई है या ब्रज में ही पिता उसे बुलाते हैं, भैया उसे बुलाने आते हैं और वो सभी अपने शिहर में जाकर वहाँ पर झूले रहते हैं आम की डाली में, कदम्ब की डाली में, और वहाँ पर सब उसी भावना से कृष्ण और राधा जी के कीर्तनों को करते हुए सभी लोग चलाते हैं। ये सब जो लीलाएं हैं हमारे गोस्वामियों ने, विशेषकर स्वरूप गोस्वामी इत्यादि जी ने, कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने अपने अपने कृष्ण भावनामृत संग्रह में, गोविंद लीलामृत में, और उप गोस्वामी ने अपने उज्ज्वलीन मणि ग्रंथों में इसका ग्रंथन किया है। मुक्त महापुरुष लोग अपने सिद्ध शरीर से मंजरी या गोपी रूप में 24 घंटे बैठकर इन्हीं लीलाओं का चिंतन करते हैं। साधारण लोगों के लिए संभव नहीं है। जबकि साधक अपने गुरु और वैष्णव के अधीन रहकर भजन साधन करते करते, उत्तम भक्ति का साधन करते हुए जब उसके सारे अनर्थ दूर हो जाते हैं, काम क्रोध लोभ मौत मोह सब दूर हो जाते हैं, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्ति भवति। जब उसकी भक्ति निष्ठा में बदल जाती है और उसके बाद रुचि और आसक्ति आती है, तो भजन के परिपक्व होने पर स्वरूप शक्ति की ह्लादनी और संबित की सार भक्ति वृत्ति, जिसको शुद्ध सत्व कहते हैं, जीवों के हृदय उदित होती है। उस समय में जीव अपने स्वरूप की कुछ झलक आभास के रूप में दर्शन करता है और उपलब्धि करता है। गुरु उस समय समझ करके उसको इसी प्रकार के एकादश भाव देता है, तुम्हारा नाम क्या है, स्वरूप कहाँ है, कहाँ वास है, कैसे तुम्हारे वस्त्र हैं, कैसे तुम्हारे भाव है, तुम पाल्यदासी तुम कैसी है, और तुम्हारी सेवा क्या है, इस प्रकार के एकादश भाव हैं। उन भावों को गुरु उनको देता है। ये रूपानुगत पद्धति है भजन की। इसके द्वारा सब लीलाओं का चिंतन करते करते भगवान की कृपा से, भक्तों की कृपा से, गोपियों की कृपा से, स्वरूप शक्ति और भक्ति वृत्ति की कृपा से ये सब चिंतन अपने आप होने लगता है, लीलाओं की माला बन जाती है। इसी लीलाओं के चिंतन को सारस्वती लीला चिंतन कहते हैं। ये साधारण भक्तों के लिए, अनर्थ मुक्त लोगों के लिए, ये किसी किसी एक बिरले भक्तों का ऐसा। हमारे भजन का यही उद्देश्य है। श्री चैतन्य महाप्रभु इसी चीज को देने के लिए जगत में पधारे थे। चैतन्य महाप्रभु बड़े करुण हैं, बड़े रसिक हैं। रसिक होने के नाते श्रीमती राधिका जी के भावों का आस्वादन करने के लिए आए, और करुण होने के नाते रागानुगा मार्ग की शिक्षा देने के लिए आए। यही रागानुगा मार्ग है। रूप गोस्वामी के अनुगत्य के बिना, उनके अनुगत्य जीव गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी इत्यादि हैं, नरोत्तम ठाकुर हैं, इनके अनुगत्य के बिना, इनके भावों को ग्रहण किए बिना कोई भी इस लीला में प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए जो परम सौभाग्यवान जीव हैं उनके लिए ही ये चीजें हैं। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु आकर के सब साधारण में इस चीजों को वितरण किया, थोड़ी सी भी किसी में गुण देखा थोड़ा सा भी, तो उनके लिए इन चीजों को प्रकाश किया। ये सौभाग्यवान जी सब ये इस चीज को पा करके और इस दुर्लभ भजन साधन में प्रवेश करेंगे, तब इन लीलाओं का चिंतन कर सकेंगे, तब राधा कृष्ण का प्रेम क्या है, महाभाव किसको कहते हैं, अथवा प्रेम स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव इत्यादि किसको कहते हैं, तब कोई समझ। और जब इन अवस्थाओं में आएगा, अंततः प्रेम की भूमिका में जब आएगा, तब कुछ कुछ इन लीलाओं को समझने के लिए योग्य हो सकता है। इतना दुर्लभ चैतन्य महाप्रभु जी इतने कृपालु हैं कि उन्होंने जो सामने आया उसको कृष्ण प्रेम किया। तो इसलिए आप लोग परम सौभाग्य हैं जो चैतन्य महाप्रभु की लाइन में, उनकी आनुगत्य में आप लोग भजन करने की कुछ इच्छा लाते हैं। केवल मंदिर बनाने के लिए, केवल इधर उधर पैसा कमाने के लिए, या और कुछ जो आजकल साधारण रूप में और जगहों में चल रहा है, इसके लिए यह दुर्लभ भजन देने के लिए ही स्वामी जी भी वहां पर पधारे थे और इतना कष्ट किया था, इतने प्रचार केंद्र खुले थे। आज कल इन सब चीजों का सर्वथा अभाव हो रहा है। ऊपर से बड़े बड़े मंदिर बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, लोग आते हैं और कुछ दिनों के बाद में भजन में रस नहीं मिलता, वो छोड़ करके चले जाते हैं। इसलिए आप लोग भजन के उद्देश्य से महाप्रभु के आंतरिक भावों को समझने की चेष्टा करें और इसमें प्रयास करें। इसलिए आदौ श्रद्धा तथा साधु संग अथ भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति तक पहुंचने के लिए, भाव तक पहुंचने के लिए चेष्टा। हमारे अंदर जो अनर्थ है उसको दूर करें और अनुकूल जो भक्ति के हैं उस सबको ग्रहण करें। विशेष करके कृष्ण की भक्ति के लिए अखिल चेष्टा परायण होइए और कृष्ण की भक्ति के लिए अखिल भोगों का त्याग होना चाहिए, तब ऐसे सुंदर भाव आ जाए। जैसे भी वो आप लोग परम सौभाग्यवान हैं, आप लोग सभी लोग मिल करके ऐसी भक्ति का अनुशीलन करें, जैव धर्म का पाठ आप लोगों के अंदर हो और ऐसे ऐसे सुंदर विचार आए। हमारा वहाँ आने का यही उद्देश्य है, जो शुद्ध भक्ति आप लोगों को की जाए और कोई भी उद्देश्य नहीं। इसी उद्देश्य से आप लोग वहाँ पर एक मंदिर बनाने की भी चेष्टा कर रहे हैं और उत्साह के साथ में करेंगे, किंतु प्रतिदिन या बीच बीच में जैसे आप लोग अभी व्यवस्था कर रहे हैं, शुद्ध भक्ति का अनुशील प्रवचन पाठ और ऐसी ऐसी झूलन, जन्माष्टमी, रामनवमी इत्यादि का पालन होना चाहिए और जहाँ तक हो सके रूप गोस्वामी के विचारों का पालन करें। इसके लिए आप लोग उनके द्वारा लिखित उपदेशामृत, मन शिक्षा इत्यादि का भी बीच बीच में पाठ होना चाहिए। इसलिए आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं, आप लोग इतने लोग आए हैं, इसलिए सबको हमारा हार्दिक स्नेह आशीर्वाद है। आप इसे ग्रहण करेंगे और भजन राज्य में प्रवेश करने के लिए चिंता करेंगे। गौर प्रमानंदे हरि हरि। धन्यवाद। ठीक है
जी, बहुत आपका धन्यवाद, आपने अपना कुछ समय दिया हम लोगों को।
हाँ।
मैं आशीर्वाद दीजिए कि आपके उपदेशों का पालन कर सके।
हाँ। आप लोग नियमित रूप से ऐसे ही कभी कभी बैठेंगे और हमको कहेंगे तो मैं बीच बीच में कुछ बोल दिया करूंगा। और मैं अब हमारे यहाँ पर आजकल मैं खूब एकादशी से ही बड़े अधिक परिमाण में वृंदावन में झूलन हम लोग मनाने जा रहे हैं। दिल्ली से भी काफी लोग आएंगे और वृंदावन में वहीं पर 5 दिन रह करके मैं वहाँ पर प्रवचन करूंगा, तो आप लोग हमारा आशीर्वाद ग्रहण करें। बस
हरे
कृष्ण।
हरे कृष्ण।
हाँ हरे कृष्ण। हरे हरे।